मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। एफईआईएस के आज 10 दिसंबर 2019 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के रूप में मैं आप सबसे हिंद महासागर और भारत की जो इस पर निर्भरता है या कह लीजिए कि इसकी जो इसका जो महत्व है उस विषय पर बात करूंगा, लेकिन इससे पहले हम कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। एक मैं सूचना देना चाहूंगा फ्रेंड्स, और यह सूचना विशेषकर है सबके लिए ही, लेकिन विशेषकर जो ऑनलाइन क्लास के हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए है। कल के करंट कंटेंट में एक टॉपिक डाला गया है, 9 नवंबर परिपक्वता का प्रमाण। 9 नवंबर परिपक्वता का प्रमाण, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आपको मालूम है कि 9 नवंबर को उच्चतम न्यायालय ने जो अयोध्या का मामला था उस पर अपना निर्णय दिया, और वह निर्णय पूरे के पूरे हिंदुस्तान को सच पूछे तो आश्चर्यजनक इस मायने में लगा कि इसके बाद जो घटनाएं घटित होनी थी वो नहीं हुई और सब कुछ शांतिपूर्वक निकल गया। लोगों के दिमाग में बहुत सी आशंकाएं भरी हुई थी। तो ये क्या है, इससे क्या प्रमाणित होता है? उसमें मैंने यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि यह भारतीय चेतना में जबरदस्त बदलाव की एक घड़ी है, एक डेट है, एक तिथि है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिहाज से यह बहुत इंपॉर्टेंट मुझे मालूम पड़ रहा है। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि इस आर्टिकल को आप अपने पास रखें और इस पर विचार करें, और इस पर छोटे छोटे अगर आप चाहें तो प्रश्नों के उत्तरों के लिए बिंदु निकाल सकते हैं। मैंने जो ऑनलाइन क्लासेस के स्टूडेंट के लिए विशेष करके जो बात कही है उसे भी मैं स्पष्ट कर दूं। दरअसल हम अपने ऑनलाइन के जो स्टूडेंट होते हैं हर महीने का जो जनरल स्टडीज करंट का जो हिस्सा होता है उसका एक आप यूं कह लीजिए कि कलेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इस बार जो आपको कलेक्शन बस मिलने ही वाला है उसके तहत मैंने इस आर्टिकल का उल्लेख किया है। तो जब वहां आप ये उल्लेख सुनेंगे तो फिर आपको चाहिए कि तुरंत फिर आप करेंट कंटेंट में जाकर के इसे सुरक्षित कर लें, या चाहें तो आप अभी से ही इसे अपने पास रख लें। तो आप भ्रमित न हो इसलिए मैंने ये जानकारियां आपको दी हैं। फ्रेंड्स, आइए कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। आपने सुना है, 2-3 दिन से आप पढ़ रहे हैं कि दिल्ली के एक मकान में जो आग लगी है वो बहुत ही भयावह है, और वो जो आग लगी है वो उसके बारे में आपको कुछ तथ्य मालूम है कि किस तरह से रिहायशी मकान था और उस रिहायशी मकान में बकायदे कारखाने चल रहे थे, जबकि नियम के तहत ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये पहली घटना नहीं है, दिल्ली में इससे पहले भी घटनाएं घट चुकी हैं जिसमें उपहार सिनेमा का उल्लेख आप बार बार पढ़ रहे होंगे कि एक सिनेमा हॉल में जहां हम सारे नियम कानून लागू किए जाते होंगे अपेक्षा करते हैं, वहां ये नियम लागू नहीं किए गए थे। और जिस इमारत में आग लगी वहां सोच करके देखे कि प्लास्टिक और कागज की चीजें बनाई जा रही थी और उसके पास में ही मजदूर रह भी रहे थे। उनकी खिड़की दरवाजे चूंकि बंद थे तो ज्यादातर मृत्यु तो दम घुटने से हुई। तो बेसिकली ऐसा होता क्यों है? पहली बात तो ये मान के चलिए कि ये जो घटना है आपके लिए जरूरी क्यों है। जब आप अपना सिलेबस उठा करके देखेंगे तो उसमें आपको एक मिलेगा आपदा प्रबंधन, जो आपके मुख्य परीक्षा का सिलेबस है, आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन, दो आपदाएं दो तरह की होती हैं, एक तो प्राकृतिक आपदाएं हैं, तूफान आ रहे हैं, भूकंप, ज्वालामुखी, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। दूसरा है मानव निर्मित आपदा, कि हम अपने लिए आपदाएं खड़ी करते हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत से शहरों में जो बाढ़ आने लगी है वो हमारे अपने कारण, क्योंकि हम पानी के निकास को हमने रोक दिया है। और ठीक इसी तरह से ये जो आपदा है ये मानव निर्मित आपदा है, और जबकि इस आपदा को बड़े आराम से रोका जा सकता है और था, और खासकर इस रूप में कि इसके लिए कुछ नियम कानून बनाए गए हैं, और अगर उन नियम कानूनों का पालन किया जाता तो ये आपदा नहीं आती। सवाल ये उठता है कि रिहायशी एरिया में अगर इस तरह का कारखाना चल रहा है तो देखिए कोई वायवीय चीज तो है नहीं, वो बड़े आराम से दिखाई दे रही है, लोग उससे परेशान हो रहे हैं, तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि अथॉरिटी के पास इसकी जानकारी नहीं होगी। तो अथॉरिटी के पास जानकारी होने के बाद भी उसने कोई कदम अभी तक क्यों नहीं उठाया, ये एक प्रश्न पैदा होता है। यहां मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा रेफरेंस के तौर पर कि 1984 दिसंबर में मध्य भोपाल में जो यूनियन कार्बाइड का जो मामला हुआ था जिससे जहरीली गैस रिसी थी, वो भी इसी लापरवाही के तहत ही थी, और उसका कोई बहुत बड़ा कारण नहीं था, केवल एक लापरवाही, छोटी सी लापरवाही जिसमें हजारों लोग आप यूं कह लीजिए कि मारे गए। तो दोस्तों इसे आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए, रेफरेंस के रूप में नोट कर लीजिए। एक जो आपने न्यूज में सुना और कल रात में मैं बहस भी सुन रहा था जो हमारे लोकसभा में चल रही थी, वो नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर के, इस पर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, मैं आपको कुछ आर्टिकल्स भी प्रोवाइड कर रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सिविल सर्विस के लिए है। इसमें मैं आपको दो पॉइंट आज स्पेशली बताना चाहूंगा। पहला पॉइंट तो ये है कि देखिए, जो इसकी आलोचना की जा रही है, जो विपक्ष जो प्रश्न उठा रहा है, वो हमारे संविधान का जो धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है उसको लेकर के उठा रहा है। इसमें धर्मनिरपेक्षता को कैसे कह रहा है, क्योंकि इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि जो दूसरे देशों से जो हमारे यहां लोग आए हुए शरणार्थी, उसमें मुस्लिमों को छोड़ करके बाकी को नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, तो मुस्लिम उसमें शामिल नहीं है, तो ये हमारी धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध है कि हम एक धर्म वालों को कैसे नागरिकता देने से इनकार कर सकते हैं। लेकिन कल जो हमारे गृह मंत्री हैं, जो संसद में लोकसभा में जो उन्होंने बात कही, मैं स्पेशली आपका ध्यान इधर दिलाना चाहूंगा। उन्होंने ये कहा कि ये जो मुस्लिम कहा जा रहा है, इसे आप इस रूप में समझिए, वो ये कि जिन देशों को हम नागरिकता देने जा रहे हैं, हमारा उसमें जो पॉइंट है वो ये है कि वे व्यक्ति उन देशों में अल्पसंख्यक होने चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, वे व्यक्ति अपने अपने देशों में अल्पसंख्यक होने चाहिए, क्योंकि वो अब उन अपने देशों में अल्पसंख्यक हैं और उन पर कुछ अत्याचार हो रहे हैं, तो वो भागकर भारत आए हैं, तो उन्हें हम नागरिकता देने पर विचार कर रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा कि इत्तफाक है कि ये जो मुस्लिम उसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ये जितने भी देश हैं जहां हम नागरिकता, जिनके शरणार्थियों को नागरिकता देने की बात कर रहे हैं, वहां मुस्लिम अल्पसंख्यक है ही नहीं, वो बहुसंख्यक हैं, वो अल्पसंख्यक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भारत में जब वो है तो वो मुस्लिम छोड़कर के कहा जा रहा है, जबकि इसका जो मूल शब्द है वो ये है कि उन देशों के जो अल्पसंख्यक हैं और वहां जो आप यूं कह लीजिए भेदभाव के अत्याचारों के जो शिकार होकर के भारत में आए हैं, हम उनके नागरिकता पर विचार कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है जो आपके दिमाग में स्पष्ट रहना चाहिए। न्यूज में आपने सुना कि एक शस्त्र के बारे में एक अभी कानून में संशोधन किया गया है, शस्त्र रखने के बारे में कि एक व्यक्ति कितने हथियार रख सकता है, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। उसी में एक लाइन ये थी कि जो शस्त्र है वो केंद्रीय सूची का विषय है, ये आपको मालूम होना चाहिए ना, कभी कभी प्री में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि यह केंद्रीय सूची का विषय है। फ्रेंड्स, आज के करंट कंटेंट में आपको जो आर्टिकल प्रोवाइड किया जा रहा है वो है असम राइफल्स में परिवर्तन का दौर, यानी इसे आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से मुझे थोड़ा सा ये महत्वपूर्ण मालूम पड़ रहा है, मुख्य परीक्षा के लिए तो शायद उतना इम्पॉर्टेंट न हो, तो थोड़ा सा एक बार आप देख लीजिएगा। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर और वह हिंद महासागर और भारत। देखिए, इस विषय को मैंने क्यों चुना है, इस विषय को चुनने का बहुत ही सिंपल दो कारण है। पहला तो ये है कि श्रीलंका में चुनाव हुए और वहाँ राष्ट्रपति जी जो बने वो भारत की यात्रा पर आए, और जब वो यात्रा पर आए तो भारत ने बकायदे $45 करोड़ का ऋण मंजूर किया, और उसी समय मैंने चर्चा की थी कि किस तरह से जो श्रीलंका और चीन में जो निकटता बढ़ रही है, भारत के लिए अब एक चुनौती खड़ी हो गई है कि कैसे वह इसका मुकाबला करेगी। और देखिए, चीन श्रीलंका के जरिए, आप यूं कह लीजिए कि हिंद महासागर, श्रीलंका के जरिए नहीं, दूसरे भी देश हैं उनके जरिए जो पूरा का पूरा जो हिंद महासागर का क्षेत्र है उसमें अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहा है, और चीन जो है अब तो श्रीलंका का सबसे बड़ा निवेशक भी हो गया है, तो श्रीलंका आसानी के साथ चीन की अनदेखी नहीं कर सकता है। दूसरा कारण यह है कि आज मैं आपको एक आर्टिकल भी प्रोवाइड कर रहा हूं, बिजनेस स्टैंडर्ड में छपा है, श्रीलंका और हिंद महासागर में भारत चीन प्रतिद्वंदिता, हिंद महासागर में भारत चीन प्रतिद्वंदिता। यहां स्पेशली हिंद महासागर का चूंकि उल्लेख है तो मुझे लगा कि हिंद महासागर के बारे में मुझे थोड़ी जानकारी आपको देनी चाहिए कि ऐसा हिंद महासागर क्या हो गया कि दोनों देश हिंद महासागर के लिए अपनी प्रतिद्वंदिता में लगे हुए हैं। इसके दो पक्ष हैं, एक तो हिंद महासागर पूरी दुनिया के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है, भारत के लिए तो है ही। देखिए, इस हिंद महासागर में तीसरा बड़ा महासागर है, आप जानते हैं 20% जो पानी है वो हिंद महासागर के तहत है। इसकी लोकेशन कुछ इस तरीके की है कि ये पूरी दुनिया के व्यापार के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, चाहे आप एक बेहतर होगा कि आप इसमें एटलस देखें, अगर आप मैप नहीं देखेंगे तो बातें आप समझ नहीं पाएंगे। इसका अगर आप विस्तार देखेंगे, लोकेशन देखिए, तो भारत में, अगर भारत के पश्चिम को लेंगे गुजरात वाले साइड को, तो अफ्रीका तक फैला हुआ है। जब पूर्वी दिशा में जाएंगे इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की सीमा तक फैला हुआ है। तो फिर जब आप यूरोप से ट्रेवल करेंगे तो आप देखिए कि पूरा अटलांटिक महासागर से लेकर के हिंद महासागर होते हुए इधर ऑस्ट्रेलिया, और इस पूरा का पूरा आप चक्कर लगा सकते हैं। और फिर यहां जो पूरे के पूरे विश्व का जो तेल है, सोचिए ऑयल, उसका 80% परिवहन हिंद महासागर के जरिए होता है। अब सोच करके देखिए कि 80% और 15% जो मछली है वो हिंद महासागर में है, दुनिया भर के यहां आप खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई भी देश हिंद महासागर की उपेक्षा नहीं कर सकता। खैर चलिए, तो विश्व के संदर्भ में मैंने थोड़ी सी बातें बताई हैं, मैं चाहूंगा कि इसे आप और भी थोड़े से अच्छे से देख लें। जहां तक भारत का सवाल है, तो भारत का तो जो तीन तरफ का जो भूगोल है वो हिंद महासागर से घिरा हुआ है। भले हम उसको अरब सागर और बंगाल की खाड़ी कहते हैं, लेकिन है तो वो हिंद महासागर के ही पार्ट है, और उसका साउथ देखिए तो पूरा का पूरा हिंद महासागर है। तो इसीलिए आपने देखा होगा भारत जो सार्क देशों के साथ, साउथ ईस्ट एशियन एशियान देशों के साथ पूर्व की ओर देखो जो नीतियां हैं, वो खासकर इसलिए क्योंकि ये जो देश हैं ये हिंद महासागर में स्थित हैं, और भारत के लिए हिंद महासागर बहुत ज्यादा मायने रखता है। आप यही सोच लीजिए कि हम जो अपना पूरा जो ऑयल इम्पोर्ट करते हैं उसका 70% इम्पोर्ट सिर्फ हिंद महासागर से होता है, और हम जो दूसरे देशों से जो हम व्यापार करते हैं, अब आप देखिए कि एक लोकेशन आप बेहतर होगा कि आप एटलस में लोकेट करें कि भारत से जहाज चले, पश्चिम तट से जहाज चले गुजरात वाले से, इसके बाद वो अफ्रीका के तट पर पहुंचे। आप देखिए एटलस में अफ्रीका के तट में पहुंच करके फिर वो लाल सागर में घुस जाते हैं, लोकेट कीजिए उसको। जैसे ही वो लाल सागर में घुसते हैं तो उधर वो फिर स्वेज नहर मिल जाता है उनको, और स्वेज नहर के बाद वो सीधे सीधे भूमध्य सागर में पहुंच जाते हैं, और भूमध्य सागर में आप पहुंच गए तो आप यूरोप में पहुंच गए। तो आप देखें कि किस तरीके से ये जो पश्चिम का हिस्सा है जो हिंद महासागर का भारत वाला, वो व्यापार के लिए यूरोप को कितना निकट का बना देता है। तो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस इसकी है, और फिर जो समुद्री जीव उत्पाद हमारे जो मछली मारने और जो दूसरा व्यापार जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, लगभग 1.5 करोड़ लोग का जीवन यापन इससे चलता है हिंद महासागर में मछलियों के मारने से। और सुरक्षा की दृष्टि से तो हिंद महासागर बेहद इंपॉर्टेंट हमारे लिए है ही। अगर आप उधर सोमालिया को देखेंगे जो अफ्रीका के पूर्वी तट पर है, तो वहां डाकुओं की बहुत ज्यादा डाकुओं का आतंक रहता है, अगर हमारा नियंत्रण उस पर नहीं रहा तो हम उसको कैसे कर लेंगे। चाइना लगातार अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा है, उस दृष्टि से भी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम हिंद महासागर सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि चाइना के साथ हमारे संबंध कोई बहुत बेहतर इस मायने में नहीं रहे हैं। तो दोस्तों भारत के लिए जो हिंद महासागर है इन सब के चलते बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं आपको बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको दे रहा हूं, आप सब देख लेंगे। सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ फ्रेंड्स के नाम हैं, अंशिता मेघ राजानी भोपाल से, पंकज सैनी जयपुर से, विशाल यादव इलाहाबाद से, रवि अहिरवार गुना मध्य प्रदेश से, जय कुमार गढ़वी कच्छ गुजरात से, गौरव भिलाई छत्तीसगढ़ से, सतीश जायसवाल सिंगरौली मध्य प्रदेश से, नलिनाक्ष शंकरम, आयुषी अग्रवाल, ज्ञानेन्द्र यादव और दुर्गेश अग्रवाल है, आप सभी का बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।